नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के अम्मान पहुंच गए हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसैन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत के लिए श्री जाफर हसन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। एक रिपोर्ट।
भारत और जॉर्डन के बीच संबंध गहरे ऐतिहासिक जुड़ाव, परस्पर सम्मान और राजनीतिक, आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित हैं। 1950 में स्थापित राजनयिक संबंध पिछले 75 वर्षों में तेजी से मजबूत हुए हैं। ये संबंध क्षेत्रीय स्थिरता, विकास और बातचीत में साझा हितों को दर्शाते हैं। जॉर्डन में भारतीय राजदूत मनीष चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और सुदृढ़ होने तथा मित्रता और सहयोग के बंधन को मजबूती मिलने की आशा है। अम्मान से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि वे अपने दौरे के पहले चरण में किंग अब्दुल्ला और जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। श्री मोदी अम्मान में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। श्री मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा है। अम्मान से प्रधानमंत्री कल इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में श्री मोदी बुधवार को ओमान की राजधानी मस्कत पहुंचेंगे। राज्यसभा में आज चुनाव सुधारों पर चर्चा फिर शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए एआई अन्ना डीएमके के एम थंबीदुरई ने कहा कि शुद्ध और सटीक मतदाता सूची लोकतंत्र को मजबूत करती है और पारदर्शिता मतदाताओं को सशक्त बनाती है। वाईएसआर कांग्रेस के वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि चुनावी सुधार एक सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय जनता दल के संजय यादव ने कहा कि देश के चुनावी सुधारों के लिए नई पीढ़ी के सुधारों की आवश्यकता है। जनता दल सेकुलर के एचडी देवगौड़ा, भारत राष्ट्र समिति के आर सुरेश रेड्डी, जनता दल यूनाइटेड के संजय झा, शिवसेना के मुरली मिलिंद देवड़ा और समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा जारी है। लोकसभा में 2025-26 के लिए पूरक अनुदान मांगों पर चर्चा फिर शुरू हुई। इसमें संसद से 1,32,000 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी गई है। इसमें उर्वरक सब्सिडी पर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय शामिल है। विधेयक में मंत्रालयों और विभागों की बचत से पूरे किए जाने वाले 90,812 करोड़ रुपए के कुल अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव है। लोकसभा में आज निरसन और संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसमें कुछ विधेयक को निरस्त करने और कुछ अन्य विधेयकों में संशोधन करने का प्रावधान है। इस विधेयक में विधायी विभाग ने चिन्हित अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव किया है। लोकसभा में आज विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया गया। इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विधेयक पेश किया। विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में कई सांसदों ने विधेयक पर व्यापक विचार विमर्श का समर्थन किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि पिछले 11 वर्ष में देश में सौर ऊर्जा उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में हुए विकास पर श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि भारत अब कोयले का चौथा सबसे बड़ा शोधन केंद्र है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन पर बल दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित उस संशोधन विधेयक को अस्वीकार कर दिया है जिसमें राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपाल के स्थान पर मुख्यमंत्री का नाम कुलाधिपति पद के लिए प्रस्तावित था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गाजियाबाद और नोएडा में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कार्य योजनाओं की विस्तृत समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री यादव ने बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को धन का तर्कसंगत आवंटन सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मापदंडों को उन्नत करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को आईसीसी ने नवंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया है। महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज का ये सबसे बड़ा स्कोर है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।